તારીખ 19/2/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 467.
जीव को एक क्षण भी अंतर्भेद जागृति हो जाए तो उसे मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है, तो मोक्ष के समीप हो जाता है. ऐसे आत्मकल्याण के विचार में जो बलवान है और अप्रमत्त भाव से मैंने प्रमाद नहीं रख करके यानी शिथिलता नहीं रख करके जो अपने आत्मकल्याण में अग्रेसर होता है तो उनको एक आत्मयोग बनता है. तथारूप योग को यहाँ आत्मयोग कहा है. आत्मा प्राप्त हो जाए ऐसा योग, इसको आत्मयोग कहते हैं. योग के बहुत से प्रकार हैं और योगा के केंद्र आजकल बहुत चलते हैं, लेकिन वो बात इधर नहीं है. इधर आत्मकल्याण का योग को आत्मयोग कहते हैं और यही यथा योग्य योग है. वह योग कैसा होता है कि यह योग में जीव को अपने आत्मकल्याण की अंतर्भावना से कोई सत्पुरुष की खोज उत्पन्न होती है और ऐसे सत्पुरुष की खोज के कारण से इनके परिणाम जो है वो पात्रता में आते हैं. दर्शनों की मंदता को प्राप्त होते हैं, ज्ञान की निर्मलता को प्राप्त होते हैं. ऐसी परिस्थिति में कोई सत्पुरुष का योग हो भी जाता है, नहीं होता है ऐसा नहीं बनता है. हाँ, कुदरत इसमें बंधी हुई है. जिसको आत्मकल्याण की अंतर की भावना से सत्पुरुष के आश्रय में जाने की तड़पन आई, उसको सत्पुरुष का योग भी मिल जाता है. नहीं मिलता है ऐसा नहीं बनता है. ऐसे योगानुयोग होना एक और आत्मकल्याण की अंतर्भावना और दूसरी ओर सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग की तड़पन और उसी पूर्वक प्रत्यक्ष योग का बनना होना, उसी को कहते हैं आत्मयोग. उसको क्या कहते हैं? वो आत्मयोग है. तथारूप योग माने ऐसे आत्मयोग. ऐसा आत्मयोग प्राप्त करके तो बात दोनों बाजू ऐसी हुई कि उपादान की योग्यता भी यथार्थ हो गई और इस योग्यता में उसको मार्ग प्रदर्शन करने वाले सत्पुरुष का योग भी हो गया. उपादान और निमित्त दोनों का मेल बैठ गया. ऐसे योग को प्राप्त करके जीव को एक क्षण भी ऐसे योग में रह करके कोई ऐसी धन्य पल आती है, धन्य क्षण आती है कि जीव को अंतर्भेद जागृति होती है. अंतर्भेद जागृति होती है तो क्या होता है, कि उसका अंतर भेदा जाता है। अंतर भेद जाता है इसका मतलब क्या है, कि अनादि से जीव के अंतरंग में एक संसार परिणति जमी हुई है, वो निर्विकल्प परिणति है। जिस जिस कर्म जनित अवस्था प्राप्त होता है, मैं वैसा ही हूं, ऐसी एक निर्विकल्प परिणति जमी हुई रहती है। जैसे वर्तमान में देखे तो मैं मनुष्य हूं, ऐसी एक निर्विकल्प परिणति चल रही है। कोई कहेंगे कि तुम गद्दा हो, तो बोलेंगे करे मैं तो मनुष्य हूं, क्या बोल रहा है तुम। मनुष्यपना का विकल्प नहीं करना पड़ता कि मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्यपना तो कर्मजनित अवस्था है, ऐसे अनेक प्रकार की कर्मजनित अवस्था है। मनुष्य होता है वो स्त्री होता है या पुरुष होता है आत्मा। तो जो आत्मा पुरुष होता है निर्विकल्प रूप से उनको पुरुषपना की परिणति चलती है, जो आत्मा स्त्री होता है उसको स्त्रीपना की निर्विकल्प परिणति चलती है, उसको विकल्प नहीं करना पड़ता। पुरुष को ऐसा विकल्प नहीं होता कि कहीं मैं स्त्री तो नहीं हूं, स्त्री को ऐसा विकल्प नहीं होता कि कहीं मैं पुरुष तो नहीं बन गया, ऐसा होगा ही नहीं। निर्विकल्प रूप से जिस जिस प्रकार के कर्म के उदय की अवस्था को प्राप्त होगा, वह मैं उतना ही हूं, वैसा ही हूं, ऐसी एक परिणति जमी हुई रहती है। तो सत्पुरुष के योग से और साथ में आत्मकल्याण की अंतर भावना से कोई ऐसा क्षण मिल जाता है, हो जाता है कि ये परिणति टूट जाती है। अंतर भेद होता है मतलब ये परिणति टूट जाती है। तो जो नास्ति में था, यानी जो परिणति का अभाव करना चाहिए था उसका अभाव होता है, किसी एक क्षण में इसका अभाव हो जाता है और जागृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये कुछ नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसी अंतर भेद होकर के जागृति आती है। ऊपर ऊपर से जो सुनते हैं, ऊपर ऊपर से स्वाध्याय करते हैं, उनको अंतर्भेद नहीं होता, उसकी परिणति नहीं बदलती। उपयोग में कुछ भी करे लेकिन परिणति नहीं बदलती। तो ये परिणति जिसकी टूटी तो उसको हुआ क्या, कि उसके अंतरंग में एक नई परिणति जन्म लेती है। जो अभाव करने लायक थी ऐसी परिणति टूटती है और एक नई परिणति का सद्भाव होता है। तो सद्भाव होता है उसमें आत्मस्वरूप की भावना और आत्मकल्याण की भावना की एक परिणति नई बनती है, और भाव भाषण होता है तो आत्म परिणति भी बन जाती है। वो तो स्वरूप परिणति है। आत्मा स्वयं का स्वरूप है, जिस विषय में खुद ही अनजाना रहा है और अनंत काल से अनजाना रहा है, उसको जानने के विषय में बहुत एक रहस्यभूत समस्या रही है, कि जिसका रहस्य ये अंतर्भेद जागृति होने से खुल जाता है। क्या फिर से कि आत्मा जो अपना स्वरूप है उस विषय में हम अनादि से अनजाने होते से होने से अनंत दुख को हम प्राप्त कर रहे हैं। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, वो परिस्थिति चालू है। जब अंतर्भेद जागृति आती है तो मैं आत्मा हूं ऐसी एक जागृति आ जाती है। अंतर में आत्मा हूं ऐसी जागृति आती है और भेद मैंने यहां रहस्य, वो रहस्य खुल जाता है। ऐसी एक परिणति बनती है, उसको अंतर्भेद जागृति कहने में आई है। ऐसी स्थिति जब बन जाती है किसी मुमुक्षु की, तब ऐसे मुमुक्षु को अब मोक्ष है वो ज्यादा दूर नहीं है, कि मोक्ष के बहुत समीप आ गया है ऐसा जीव है, ऐसा कृपालु देव यहां कहता है। तो मोक्ष की समीपता होने के लिए, जन्म मरण छूटने के अवसर की समीपता होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि अंतर्भेद जागृति होनी चाहिए। अंतर्भेद जागृति होने के लिए क्या होना चाहिए कि आत्मयोग की प्राप्ति होनी चाहिए। इसका क्रम है, ऊपर से नीचे आते हैं। और आत्मयोग माने क्या, कि आत्मकल्याण की और सत्पुरुष के खोज की एक अतिशय तीव्र भावना होती है और साथ साथ ही ऐसा सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग मिल भी जाता है, तब तथारूप योग की प्राप्ति हो गई। तथारूप मैंने जैसे होना चाहिए वैसा योग आ गया, ऐसी प्राप्ति हो गई। तो अंतर्भेद जागृति कुछ एक क्षण में आएगी, और कोई एक क्षण में ये अंतर्भेद जागृति आएगी तो वो आत्मा मोक्ष के समीप है ऐसा ज्ञानी पुरुष के ज्ञान में आ जाता है। ज्ञानी पुरुष के ज्ञान में तो आया है इसलिए प्रसिद्ध किया ही है, लेकिन खुद को भी अपने ज्ञान में आ जाता है। उनको भी अपना मोक्ष समीप है इस विषय में निशंकता आ जाती है। उनको संशय रहता नहीं कि मैं मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कब होगा कौन जाने, भगवान जाने, ऐसी बात नहीं। अब मेरा मोक्ष विशेष दूर नहीं है, ऐसे अंदर से आत्मा नेपथ्य में से अंदर में से ये आत्मा की आवाज आती है, उसको आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं, उसको मोक्ष के भणकार भी कह सकते हैं, और उसको अपना मोक्ष का विश्वास और प्रतीति भी कह सकते हैं। यही कहा, ऐसे जीव को मोक्ष विशेष दूर नहीं है। है? करते मतलब उसको प्रसन्नता आती है। ऐसे सुपात्र जीव को देख करके उनका चित्त प्रसन्न होता है। जब ज्ञानी पुरुष के चित्त की प्रसन्नता हुई तो इसी जीव को मोक्ष है, वही मोक्ष है उसी जीव के लिए। तो वास्तव में तो वही इसी जीव के लिए मोक्ष है। सम्यक दर्शन है, मोक्ष क्या है, सम्यक दर्शन है, वो एक पत्र में आया है। ज्ञानी पुरुष की कृपा दृष्टि यही सम्यक दर्शन है। क्या ऐसा एक पत्र में वचनामृत है कृपालु देव का, ज्ञानी पुरुष की कृपा दृष्टि यही सम्यक दर्शन है। इसका मतलब क्या कि ज्ञानी पुरुष की कृपा कब होती है कि जब पात्रता होती है तब। ऐसी पात्रता होती है तो ज्ञानी के चित्त प्रसन्न होता है और ज्ञानी का चित्त प्रसन्न होता है यही इसकी कृपा है और यही इनके लिए तो सम्यक दर्शन समझ लो। वो ठीक है बराबर है तो आप फिर हार करिए प्रश्न रिपीट करें। करेक्ट करेक्ट प्रश्न रिपीट करो वो जी। बराबर है नहीं तो बजाने ख्याल संभलाई नहीं प्रश्न न संभलाए तो उत्तर नो ख्याल नहीं आवे। खरी बात है खरी बात है। प्रश्न वो हुआ कि ऐसा कोई सुपात्र जीव ज्ञानी के समीप होता है तो ज्ञानी को क्या होता है ज्ञानी को कैसे परिणाम होता है कि ज्ञानी का चित्त प्रसन्न होता है। तो ज्ञानी का चित्त प्रसन्न होता है उसको दूसरे शब्द में ऐसा कहा जाता है कि उस जीव पर ज्ञानी की कृपा हुई। तो एक जगह कृपालु देव ने वो बात बताई है कि सत्पुरुष की कृपा वही सम्यक दर्शन है। वास्तव में तो स्वानुभव के काल में निर्विकल्प आत्म प्रतीति उत्पन्न होती है यही परमार्थ सम्यक दर्शन होता है। लेकिन ऐसे जीव को सम्यक दर्शन अवश्य अवश्य अल्प समय में हो जाएगा ऐसा एक प्रत्यक्ष कारण ज्ञानी पुरुष ने देख लिया। क्या देख लिया प्रत्यक्ष कारण को देख लिया इसलिए उनको भी सम्यक दर्शन कहा। वो बात कृपालु देव ने आत्मसिद्धि के 17 गाथा में भी की है कि स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य समकित तेने भाखियो कारण गणी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कारण को देख गिना वो प्रत्यक्ष कारण को देखा या प्रत्यक्ष कारण को गिना तो गिन करके सम्यक दर्शन बोल दिया तो उनको संकित है वो तो प्रथम संकित की बात है। फिर आत्मस्वरूप की पहचान और भावभाषण होगा ये दूसरा संकित है और फिर निर्विकल्प आत्मस्वरूप की प्रतीति आएगी वो परमार्थ सम्यक दर्शन वास्तविक सम्यक दर्शन वो तीसरा सम्यक दर्शन है। पहला सम्यक दर्शन दूसरा सम्यक दर्शन का अनन्य कारण है। जिसको पहला सम्यक दर्शन हुआ उसको दूसरा होगा होगा और होगा ही और जिसको दूसरा होगा उसको तीसरा होगा होगा और होगा ही इसलिए उनको अनन्य कारण भी कहते हैं और उसको अंगभूत कारण भी कहने में आता है। वो सम्यक दर्शन का अंग है ऐसा कहते हैं। वो भावभाषण को सम्यक दर्शन का अंग का व्याख्यान सार 220 में अंग कह दिया कारण नहीं कहा निमित्त नहीं कहा अंग बोल दिया। तो मतलब होता ही है नहीं होता है ऐसा नहीं है ऐसे बताने के हेतु ये तीनों बात कृपालु देव ने 751 नंबर के पत्र में की है कि इस तरह से सम्यक दर्शन की बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन मुमुक्षु की भूमिका में अगर किसी को बैठ जाती है उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और हमको तो हम तो कारण में कार्य का उपचार करके उसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं उसी का नाम सम्यक दर्शन देने में बिल्कुल उचितता है कुछ भी अनुचितता नहीं है ऐसा समझना चाहिए। यहाँ भी एक गूढ़ वचनामृत आया है कि कोई भी तथारूप योग को प्राप्त करके जीव को एक क्षण भी अंतर्भेद जागृति होती है तो उसको मोक्ष विशेष दूर नहीं है। सम्यक दर्शन है तो मोक्ष, सम्यक दर्शन जिसको है उसको मोक्ष दूर नहीं होता है, उसको मोक्ष समीप ही होता है। इस विषय में एक और भी रेफरेंस है वो पढ़ने योग्य है। यहाँ कितना 642 सुभाग भाई का रेफरेंस देख रहे थे 247 में। दूसरी बात है ज्ञानी पुरुष का निश्चय होकर के अंतर भेद न रहे, मैंने एक के भाव हो जाए तो आत्म प्राप्ति बिल्कुल सुलभ है। ऐसा ज्ञानी पुकार पुकार के गए हैं फिर लोग क्यों भूलते हैं, ऐसा करके लिया है। वहाँ अंतर भेद मैंने अंतर नहीं रहना, भेद नहीं रहना, आपस में एक के भाव हो जाना, वो बात है। हम दूसरी एक बात देखते हैं तो 247 पत्र में उन्होंने सौभाग भाई को कोई ऐसी बात लिखी कि आपको पहला संकित तो हो गया है, मैंने सत्पुरुष की पहचान तो आपको हो गई है और आपका स्वच्छंद भी छूट गया है, मताग्रह भी छूट गया है, स्वच्छंद मत आग्रह तजी, और आप सत्पुरुष के मार्ग में चलने का अद्भुत निश्चय को प्राप्त हो चुके हैं, फिर आपको आगे की दशा में दूसरा संकेत क्यों नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, उसका एक प्रश्न उठाया है 247 पत्र में। दूसरा बड़ा आश्चर्यकारक तो यह है, हमको आश्चर्य होता है, क्या कहते हैं, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसे को सम्यक ज्ञान के बीज के पराभक्ति के मूल की प्राप्ति हुई है। सम्यक ज्ञान का बीज और पराभक्ति का मूल, बहुत भक्ति थी देव के प्रति, सौभाग भाई को जितनी भक्ति थी उतनी भक्ति उसी वक्त किसी अन्य मुमुक्षु में नहीं थी। सबसे भक्ति तो ऐसे लल्लू जी स्वामी की प्रसिद्ध है, फिर भी सौभाग भाई की जो भक्ति थी उसके आगे कोई नहीं थे। इसलिए सौभाग भाई को तो आखिरी दिनों में सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो गई थी। लिखते हैं, ये लिखते हैं 247 पत्र और 24 वर्ष का पत्र है ये, वैशाख वद 8। मैंने दोनों के समागम को करीब 8 महीना हुआ है, 8 महीना हो गया है परिचय होना, पहचान होने तो 8 महीने के बाद खुद को प्रश्न उठा कि आप जैसे को सम्यक ज्ञान के बीज की और पराभक्ति के मूल की प्राप्ति होने पर भी उसके पीछे के भेद मैंने रहस्य क्यों प्राप्त नहीं होता है, मैंने स्वरूप का भाव वासन क्यों नहीं आता है, आपको आना चाहिए, आपकी योग्यता ऐसी है कि आपको स्वरूप का भाव वासन जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई कारण समझ में आता हो तो लिखना। मैं नहीं बताऊंगा, क्या खुद को सब मालूम है। कृपालु देव की नजर बार कोई चीज नहीं है, वो तो कोई नया आदमी आए ने तो उनको पहचान लेते कि इनकी योग्यता कैसी है, बात करने की जरूरत नहीं पड़े। उतना एक्सरे बहुत पावरफुल मशीन था अंदर में, अगले का अंदर का फोटो आ जाए, एक्सरे क्या करता है, अंदर का हड्डियों का फोटो लेता है, तो सामने वाले का नाप निकल जाए सामने आते ही, बात करे तो हो ही जाए, नाप आ ही जाए, बिना बात करे भी नाप कर लेते थे। तो सुभाग भाई से तो बहुत घनिष्ठ परिचय था, तो दूसरा संकेत नहीं हो रहा था, उसका कारण खुद जानते कि आप अंतर गवेषणा करो, क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा संकेत में क्यों नहीं आते हैं। तो उतना प्रश्न करके बात को छोड़ दिया, अपने चर्चा से तो उतना ही संबंध है कि जिसको अंतर्भेद जागृति आती है तो सत्पुरुष के पहचान से आती है, सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग में आती है, और ऐसे जीव को मोक्ष विशेष दूर नहीं होता। वो तो पहले संकेत में आ ही गया, उसको मोक्ष विशेष दूर नहीं है, फिर दूसरे संकेत में वो आ जाएगा। अब क्या कारण होगा, हमने कृपालु देव के कितने पत्र पढ़े, और खास करके सौभाग भाई के पत्र 300 करीब है, ये 954 पत्र का ग्रंथ है, पूरा जो वॉल्यूम है उसमें 954 पत्र हैं, उसमें 300 से अधिक तो सौभाग भाई के पर हैं। मैंने 30% में, 33% में तो सुभाग भाई के पत्र है, बाकी में सब मुमुक्षु की बारी आई है। उतना पत्र व्यवहार अधिक चला है अपने प्रिय मुमुक्षु के प्रति। सुभाग भाई की तो हालत ही ऐसी थी कि वो रोजाना पत्र लगते थे, कभी एक दिन में 2-3 भी लिख देते थे, और कृपालु देव इतना प्रत्युत्तर नहीं दे पाते थे, उनको उतने समय भी नहीं था, और अपने पुरुषार्थ में, अंतर पुरुषार्थ में उतने लगे हुए रहते थे कि पत्र लिखने की वृत्ति आती नहीं थी, और कभी आती वो भी उनके पत्र से मालूम पड़ता है, इसलिए वो उतना पत्र प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। लेकिन सुभाग भाई के पर जो 300 पत्र यहाँ मिलते हैं, तो ये बात हो सकता है कि ये भी पूरा नहीं मिला है, क्योंकि सब पत्र, कभी कोई पत्र गंवा जाता है, खो जाता है, तो सब पत्र तो होते नहीं है, तो 300 से ज़्यादा तो कृपालु देव ने लिखा है, तो फिर सौभाग भाई ने कितना लिखा होगा, परिचय कितना रहा, 6-7 साल का। कृपालु देव की 23 साल की उम्र में प्रथम भादवा में वो प्रत्यक्ष आपस में एक दूसरे को मिले हैं मोरवी में, इसके बाद पत्र व्यवहार दोनों को चालू हुआ है। 30 साल की कृपालु देव की आयु में जेठ व दशम को सुभाग भाई का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो 23 से लेकर के 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल का पूरा नहीं, 7 साल करीब का दोनों का परिचय रहा, उसमें इतना पत्र व्यवहार चला है। तो लगता है कि कम से कम 1000 या 1500 पत्र तो सुभाग भाई ने लिखा होगा, जिसका उत्तर यहाँ अपने को 300 करीब का उपलब्ध है। इतना घनिष्ठ पत्र व्यवहार आपस में चला तो दूसरा समकित आत्मस्वरूप की पहचान के विषय में सुभाग भाई का लक्ष्य ही नहीं गया है कि हमको आत्मकल्याण के मार्ग में अब भावभाषण कर लेना चाहिए, ऐसा लक्ष्य नहीं गया है, ऐसा उपयोग नहीं चला। तो यहाँ 24 साल की उम्र में पहले प्रश्न उठाया कृपालु देव ने, तो भी वो इस दिशा में उतने आगे नहीं बढ़े। फिर उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में एक 471 और 472 नंबर के पत्र में इस इश्यू को दोबारा उठाया, यही मुद्दे को उठा करके पत्र लिखा कि आत्मा को समाधि होने के लिए, आत्मा को निर्विकल्प दशा प्राप्त होने के लिए, वो समाधि मैंने निर्विकल्प ध्यान जो सम्यक दर्शन के काल में पहले पहले होता है, आत्मस्वरूप में स्थिति के लिए, स्थिरता के लिए किसी भी रीति से उसको बीज ज्ञान कहो तो हरकत नहीं है। मात्र उतना भेद है कि यह ज्ञान ज्ञानी पुरुष या कि जो इससे आगे हो आत्मा है ऐसा जानने वाला होना चाहिए, उतना संकेत किया है। बीज ज्ञान की बात की, वो बीज ज्ञान है, वो भावभाषण है, स्वरूप की पहचान है, तो वहां वो मुद्दे को उठाया। फिर 4 दिन के बाद दूसरा पत्र लिखा है, ये आशोसुद पांचम को लिखा है 26 की साल में, 2 साल बाद लिखा, 2.5 साल बाद लिखा, फिर दूसरा पत्र लिखा 4 दिन के बाद कि हमने आगे के पत्र में सुधारस के विषय में प्राय स्पष्ट लिखा है, वो इरादा पूर्वक लिखा था, इंटेंशनली वो बात हमने लिखी थी, ऐसा लिखने से आपको विपरिणाम आने वाला नहीं है, उल्टा परिणाम आने वाला नहीं है, ऐसा जान करके लिखा था, उसका उल्लेख किया। फिर भी सुभाग भाई उस दिशा में आगे नहीं बढ़े, फिर भी नहीं बढ़े। फिर वो तो चाहते थे, उन्होंने प्रॉमिस भी दिया है, वचन दे दिया है कि हम आपको इसी भव में ज्ञान प्राप्ति कराएंगे, ऐसा वचन दिया है। वो भी पत्रांक मालूम होगा, दो 293 नंबर का पेज है, पृष्ठ संख्या 293, उस पर वो बात लिखी हुई है। पत्रांक है 259 पत्रांक है, उसमें लिखा है कि ज्ञान धारा के विषय में मूल मार्ग हम आपको इस वक्त के समागम में थोड़ा बहुत कहेंगे, और यह मार्ग पूरा पूरा प्रकार से यही जन्म में यही भाव में आपको कहेंगे। ऐसी हमको हरि की प्रेरणा हुई है ऐसा लगता है, मैंने हमारे आत्मा में से ये प्रेरणा आई है कि आपको सन्मार्ग की प्राप्ति करा देनी चाहिए। तो जो मूल धारा यानी ज्ञान मार्ग, मूल मार्ग जो ज्ञान दशा होती है, इस विषय में प्रत्यक्ष समागम में थोड़ी बात कहेंगे, जो कहने योग्य होगी उतनी कहेंगे, थोड़ी कहेंगे, मैंने कहने योग्य होगी उतनी कहेंगे, और इस जन्म में पूरे प्रकार से ये बात कहेंगे आपको, मैंने ज्ञान प्राप्ति कराएंगे। फिर दो पंक्ति छोड़ करके लिखा है, परंतु हमको लगता है कि हमारे हाथ से हरि आपको पराभक्ति दिलवाएंगे और हरि का स्वरूप का ज्ञान कराएंगे। हरि मैंने आत्मा है, आत्मा की पराभक्ति भी आपको मिलेगी हमारे का हाथ से, मैंने हमारे निमित्त से, और आत्मस्वरूप का ज्ञान भी कराएगा, और हमारे निमित्त से ये काम होगा आपका, यही हमारा बड़ा भाग्योदय मानेंगे। ये हमारा भाग्योदय है कि हमारे हाथ से आपका कल्याण हो जाएगा, सम्यक दर्शन आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, क्यों कि आपने हमारे लिए जन्म धारण किया होगा ऐसा हमको लगता है। आपने किसी के लिए जन्म लिया है, सुभाग भाई ने हमारे लिए कृपाणुदेव के लिए जन्म लिया है ऐसा लगता है। आप हमारे अथाग उपकारी हैं, क्या लिखा है देखो, गुरु शिष्य को ऐसा लिखे ये बात कोई साधारण बात नहीं है। शिष्य तो गुरु को उपकारी माने वो बात साधारण है, सामान्य है, हर जगह बनती है, लेकिन गुरु शिष्य को उपकारी माने ये बात, ये घटना यहाँ गोपालु देव के जीवन में घटी है, इसलिए उन्होंने लिखा है। आप हमारे अथाग उपकारी हैं, आपने हमको हमारी इच्छा का सुख दिया है, इसलिए इसके बदले में नमस्कार के सिवा दूसरा बदला कौन सा दे, इसलिए हम आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराएंगे, और हमारे निमित्त से आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये हमारा बड़ा भाग्योदय होगा, ऐसा करके लिखा है। अब देखिए सुभाग भाई के प्रति कृपालु देव का प्रेम कितना है और आत्मीयता कितनी है, वो अपने को यहाँ इसका दर्शन होता है। जब कृपालु देव को सुभाग भाई के प्रति उतना प्रेम है, उतनी आत्मीयता है, तो सुभाग भाई को कितनी होगी, ये अंदाज 83 लगा देना या इसकी गिनती कर लेना, जबकि ये अंदाज का विषय नहीं है, वो गिनती का विषय नहीं है, वो इसी दशा प्राप्त करके अनुभव करने का विषय है, तभी मालूम पड़ता है ये बात। तो ऐसा एक बहुत सुंदर और जीवंत उदाहरण अपने को यहाँ दिखने में मिलता है। फिर ये जो इतिहास है वो ऐसा दिखता है, वो प्रश्न उठाया था ना, थोड़ा विषयांतर हो रहा है लेकिन थोड़ी बात चार्मिंग है। प्रश्न उठाया, सुभाग भाई का ध्यान नहीं गया, कि किस कारण से आपको आगे की दिशा नहीं प्राप्त होती है, देखो तो सही, ध्यान नहीं गया। फिर दो साल ढाई साल के बाद और इश्यू खड़ा किया पत्र व्यवहार में, ध्यान नहीं गया। क्यों ध्यान नहीं गया? खुद कृपालु देव चाहते हैं, कहते भी हैं, लिखते भी हैं, और फिर ध्यान नहीं जाता है। ऐसी कौन सी बड़ी बात सौभाग्य भाई को है कि जिससे वो अपने आत्मकल्याण की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? आता है कुछ समझ में? ये ऐसी बात कौन सी होगी? हाँ, संघ का कारण क्या, मतलब संघ का क्या कारण? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हाँ नहीं, वो बात भी नहीं है, कोई अवगुण सूचक बात नहीं है। चलो अब सद्गुण को सोचो इनका। कृपालुदेव के प्रति उतना उनको प्रेम था। एक जगह वो लिखते हैं, वो बम्बई गए थे, प्रत्यक्ष मार्ग में बार बार जाते थे, तो दूसरे मुमुक्षु को पत्र में लिखा है कि श्री सौभाग यहां पर प्रेम समाधि में है। क्या लिखा है? श्री सौभाग यहां पर प्रेम समाधि में है। तो जो समाधि में होते हैं ना, वो बाहर नहीं निकलते। किसी को भी समाधि लग जाती है ना, तो बाहर नहीं निकल सकते। तो समाधि उसको लग गई थी, बस कृपालु देव के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं था। एक ही कृपालु देव की मूर्ति सारे दिन उसको विजुअलाइज होने रहती थी, होने लगती थी। निधिध्यासन जिसको कहते हैं, वही दिखा करे, कहीं भी देखो तो वही दिखा करे। तो उसके उसमें वो उतने लीन थे, तन्मय थे, और उस भाव से तन्मय थे कि जिस भाव में मानो के उनको सर्वस्व मिल गया। क्या मिल गया? सर्वस्व मिल गया। जब किसी मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष की पहचान के बाद ऐसा होता है कि मुझे सर्वस्व मिल गया, तो वो क्या कहेगा? कि मुझे सम्यक दर्शन किया, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमको तो सब कुछ मिल गया है, अगर कुछ हमें चाहिए तो हमको सब कुछ नहीं मिला है, कुछ बाकी रह गया है। लेकिन उनको सर्वस्व मिल जाता है, तो उनको न मोक्ष की परवाह है, न सम्यक दर्शन की परवाह है, न भाव भाषण की परवाह, कोई परवाह नहीं होती है। ऐसी एक दशा उनकी हुई थी, इसकी सूचना भी कृपालु देव के शब्द से मिल जाती है। और ऐसा होता है, उसका उल्लेख भी पत्रांक 269 में वो बात है, वो खुद के लिए लिखा है, सुभाग भाई का के पर पत्र लिखा है कि मन मिलापी सत्संग के बिना कालक्षेप होना दुर्लभ है। क्या? हमारा समय जाता नहीं, दिन कटते नहीं, रात कटती नहीं, क्योंकि मन मिलापी सत्संग नहीं मिल रहा है हमको। बम्बई ममानिया में लिख रहे हैं, ममानिया से लिखते हैं, तो ममानिया में कोई सत्संग नहीं था, बम्बई में भी सत्संग नहीं था। जिसको वो चाहते हैं ऐसा सत्संग, जिसमें उनका मन ठरे, ऐसा सत्संग कहीं भी नहीं मिलता था। वो एक ही पात्र थे सुभाग भाई उसके। मन मिलापी सत्संग बिना कालक्षेप होना दुर्लभ है, मोक्ष से हमको संत चरण की समीपता बहु प्रिय है। क्या ये ओवरबाउंड है बात? ये क्रिकेट में सिक्सर लगाते हैं ना, ऐसी बात है कि संत चरण की समीपता मिल गई तो हमको मोक्ष से भी वो ज्यादा प्रिय है। और ऐसा होता ही है, जिसको ऐसे संत चरण की समीपता मिल जाती है उनको मोक्ष का भी स्मरण आता नहीं है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना बाकी है या मुझे सम्यक दर्शन होना बाकी है। मोक्ष की परवाह नहीं तो सम्यक दर्शन की तो कहां से होगी, वो बात उन्होंने यहां लिखी है
कि मोक्ष से भी हमको संत चरण की समीपता बहुत प्रिय है। लेकिन यह हरि की इच्छा के आगे दीन है हम।
हरी मैंने कुदरत ने की ऐसी कोई इच्छा है कि हम लोग आपस में प्रत्यक्ष समागम में रह सकते नहीं है, दूर रहना होता है, बार बार आपकी स्मृति होती है और इसी कारण से सत्संग के लिए आपका स्मरण हमको बार बार आता रहता है। जिस मुमुक्षु का कृपालु देव जैसे महापुरुष को भी बार बार स्मरण आए, इनके पवित्र ज्ञान में बार बार स्मरण या फोटो आ जाए, ये वाक्य ही सौभाग्य भाई हो सकता है। इसका नाम तो सौभाग्य भाई था ही, लेकिन नाम जैसा ही गुण था, भाव निक्षेप भी था और नाम निक्षेप भी था, नाम भी था और भाव भी था। वो कितने भाग्यशाली होंगे कि ऐसी बात जिसके लिए लिखने में आती है। और भी बातें बहुत लिखी है, 453 पत्र का भी अंत का जो बात लिखा है वो भी बहुत बड़ी भी लिखी है। उस प्रकार से ज्ञानी पुरुष की कृपा दृष्टि क्या होती है इस विषय में थोड़ी चर्चा चली। ऐसी एक दशा मुमुक्षु को होती है और ऐसी दशा होने की सहज परिस्थिति बने, ऐसा होना चाहिए मुमुक्षु को, क्योंकि ऐसी बात कृत्रिमता से हो सकती नहीं है। और सहज तब होती है कि जब जरूरत दिखती है तब होती है। जरूरत अन्य पदार्थ की और अन्य संयोग की मुख्यता वाली रहती है, तब ऐसी दशा समझ में आए सत्संग के दौरान तो भी ऐसी दशा कृत्रिमता से की नहीं जा सकती, तो सहज होती है जरूरत के कारण। जरूरत के कारण से कहो या इस विषय के मूल्यांकन से के कारण से कहो कि इसका सही मूल्य जब समझ में आता है तो तथारूप योग की प्राप्ति होती है और अंतर्भेद जागृति भी होती है और उसको मोक्ष है वो समीप में आ जाता है, यानी इसका परिभ्रमण अब लंबा रहने वाला नहीं है। अब आगे कहते हैं कि अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर है। अब प्रतिपक्ष की बात कहते हैं, किसको मोक्ष समीप है और किसको मोक्ष दूर है, अपने परिणाम से नाप लेना है। यहाँ तो स्पष्ट अनुभव सिद्ध बात लिखा है, जो बात लिखी है वो स्पष्ट है और अनुभव सिद्ध है। तो कहते हैं कि किसको मोक्ष दूर है कि अन्य परिणाम में जितनी तादात्म वृत्ति है। तादात्म वृत्ति कैसे होती है कि रस से होती है, और रस क्यों होता है, अपनत्व तीव्र होने से होता है। तद मैंने यह, और आत्मवृत्ति, मैंने अपनत्व की वृत्ति, आत्मभूत वृत्ति, अभेद वृत्ति, यह में मैंने सामने वाले पदार्थ में आत्मवृत्ति हो जाए, अभेदता हो जाए, तीव्र रस से अभेदता हो जाए, उसको मोक्ष ज्यादा दूर है,
उसको मोक्ष समीप
नहीं है। जितना रस और जितने आत्मवृत्ति विशेष,
उसको मोक्ष दूर है।
यानी इसको अपना आत्म सुख प्राप्त होना दूर है, यानी उसको दुख प्राप्त होना समीप है। होता है कि नहीं होता है? जो जीव अपने स्वरूप को छोड़ करके प्रारब्ध से प्राप्त हुए ऐसे संयोग में, तीन प्रकार के हैं संयोग, सचेत अचेत और सचेत अचेत मिश्र, ऐसे तीन प्रकार के संयोग में जो जीव बहुत ममत्व करता है, बहुत रस लेता है, उसको तदात्म वृत्ति कहने में आती है, उसको मोक्ष बहुत दूर है। उतना ही नहीं, उसको दुख की प्राप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि सुख नहीं होता है। तो जितना ममत्व तीव्र, उतना दुख भी ज्यादा। जितना ममत्व तीव्र, उतना वो ममत्व वाला पदार्थ के विषय में भय भी ज्यादा, और जितना भय ज्यादा उतना दुख भी ज्यादा, उतना टेंशन आएगा आएगा और आएगा। तो ये छोड़ देने का है, ऐसा समझ करके उसको छोड़ देना। यदि कोई आत्मयोग बन जाए, आत्मयोग मैंने तथारूप योग बन जाए, अभी तथारूप योग को आत्मयोग शब्द दिखा है। यदि कोई आत्मयोग बने तो इस प्राप्त मनुष्यपना का मूल्य किसी भी प्रकार से न हो सके ऐसा है। क्या लिखा? कि यदि ऊपर कहा ऐसा आत्मयोग अपने जीवन में बन जाए तो यह अनंत काल से प्राप्त हुआ ऐसा जो मनुष्यपना, इसका मूल्य नहीं हो सकेगा। कोई इसकी मूल्य करने की टर्म नहीं है, नो टर्मिनोलॉजी, इतना मूल्य है मनुष्यपने का। कब? ऐसा आत्मयोग बने तब। अगर ऐसा आत्मयोग नहीं बनता है तो ऐसा मनुष्यपना का कोई मूल्य भी नहीं है। प्राय मनुष्य देह बिना आत्मयोग बनता नहीं। 3 इंच के भव में, देवलोक में भी और नारकी में ऐसा या आत्मयोग प्राय नहीं बनता। कोई किसी को बन जाए, अरबों में किसी को, अरबों क्या, असंख्य जीवों में किसी को बन जाए अलग बात है, बाकी मनुष्य भव में ये ज्यादा संभव है, बाकी के 3 गति में ये योग नहीं बनता। ऐसा जान करके और अत्यंत निश्चय करके, ऐसा जान करके और अत्यंत निश्चय करके, यही देह में यही मनुष्य आयु पूरा होने के पहले ऐसा आत्मयोग उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा आत्मयोग उत्पन्न करने का प्रयास होना चाहिए, या ऐसे आत्मयोग बन जाए इसके लिए हमारी भावना तीव्र हो जानी चाहिए। तो फिर अंतर्भेद जागृति हो जाएगी, और अंतर्भेद जागृति हो जाएगी तो हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, जिसको मोक्ष कहते हैं। उस तरह से यहाँ पर इस बात को वर्तमान मनुष्य भव की का मूल्यांकन किया है, और इस मनुष्य भव में अनिश्चित आयु होती है, किसी का आयु का ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी किसी का भी बन सकता है, इसलिए तो हो सके उतना शीघ्रता से ऐसा आत्मयोग उत्पन्न कर देना चाहिए कि जिससे हमारा मोक्ष का मार्ग का अनुसंधान लग जाए और हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाए इस दुखी संसार से, ऐसा विशेष बोध इस पत्र में यहाँ पर दिया है। पत्र का जो शेष अंश है और भी थोड़ा विशेष है, आगे के साथ यहाँ